पृष्ठ संख्या 102, अध्याय 8, स्वतंत्र तबला वादन। तबला एक अत्यंत संवेदनक्षम किंतु निर्जीव वाद्य है। स्वतंत्र रूप में तबला वाद्य कुछ भी व्यक्त नहीं करता। इस वाद्य पर आघात करने पर ध्वनियां पैदा होती हैं। तबले पर और या बाएं पर विविध स्थानों पर उंगलियों से हाथों के आघात से विविध ध्वनियां पैदा होती हैं। इन ध्वनियों को हम तबले पर निर्माण होने वाले अलग अलग अक्षरों के नामों से संबोधित करते हैं। लय, लयकारी, भाषा, गणित, ताल, ठेका, रस, रचना, विस्तार, यह सब यद्यपि तबले से व्यक्त होता हो तो भी प्रत्यक्षतः वादक ही उसे व्यक्त किया करता है। गुरु से प्राप्त तालीम से वादक को ज्ञान प्राप्त होता है, कौशल प्राप्त होता है, विचार मिलते हैं, संस्कार प्राप्त होते हैं और इस पार्श्वभूमि पर वह अपनी कुव्वत के मुताबिक तबला वादन किया करता है। वादक की वादन क्षमता उसकी कुव्वत, संस्कार, रियाज से प्राप्त कौशल, ज्ञान, विचार के जरिए किया गया चिंतन और उसे प्राप्त सौंदर्य दृष्टि आदि बातों पर निर्भर होती है। ध्रुपद धमार की गायकी में वादक को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ करती है, अतः उसकी साथ संगत में उसे अपना वादन कौशल प्रकट करने की पर्याप्त गुंजाइश रहती थी और उसे वह सामर्थ्य के साथ प्रदर्शित कर सकता था। श्रोता भी उसके कौशल की यथेष्ट दाद दिया करते थे। कला गुणों को प्रदर्शित करने का मौका और उक्त कला गुणों की प्रशंसा दोनों बातें कलाकार को संतुष्ट एवं खुश रखने के लिए कारणीभूत सिद्ध होती थी। किंतु जब ख्याल गायकी का उदय हुआ और वह लोकप्रिय हो गई, तब साथ संगत करते समय समर्थ एवं प्रतिभावान तबला वादकों का दम घुटने लगा, क्योंकि उनको अपनी विद्वता, कौशल एवं प्रतिभा का उपयोग करने का अवसर मिलना ही असंभव होने लगा। शायद ख्याल गायकी के लिए अपेक्षित संयमित साथ संगत में उसे रसिकों की ओर से दाद मिलना भी बंद हो गया होगा और इस दम घुटन के फलस्वरूप प्रतिभावान वादकों ने अपनी खुशी के लिए स्वतंत्र तबला वादन करना तय किया होगा। इस प्रस्तुतिकरण में लोक रंजन भी होने लगा, इसलिए उस वादन प्रकार को लोक मान्यता प्राप्त हो गई। प्रतिभावान संगीतकार को जिस प्रकार राग सौंदर्य दृष्टिगोचर होता है, स्वर सौंदर्य दिखाई देता है, उसी प्रकार उसे लय सौंदर्य और लय वैविध्य भी दिख पड़ता है। पृष्ठ संख्या 103। ये लयें कैसे पैदा हुई इसके संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है। तीन ताल की मूलभूत चतरस्र लय की तरह रूपक दादरा भी स्थित मिश्र तीसरे जातियों एवं खंड गति की लयों की भी मानव को हजारों वर्षों से जानकारी है। उनकी कलात्मक उपयोग संगीत की सौंदर्य निर्मिति के लिए हुआ है और हुआ करता है। इन विविध लयों को व्यक्त करने के लिए विभिन्न अक्षरों से यथानुरूप शब्द संपदा का निर्माण हुआ और इस शब्द संपदा के सहारे प्रतिभावान कलाकारों ने अलग अलग कल्पनापूर्ण अथवा विस्तारक्षम रचनाओं की निर्मिति की। तबला लय ताल वाद्य है। संगीत तालबद्ध हुआ करता है और उस ताल को मृदंग या तबले वाद्यों पर बजाए जाने वाले ठेकों के जरिए व्यक्त किया जाता है। गायक या अन्य संगीत वाद्यकार अपनी राग रचना में अलग अलग लयों, लय कृतियों का चतुराई के साथ इस्तेमाल करके अपनी संगीत निर्मिति में आकर्षकता पैदा करते हैं। मनुष्य को जन्मतः ही लय का आकर्षण हुआ करता है। सामान्यतः मनुष्य का हृदय उसका चलना अथवा बोलना आदि में एक प्रकार की सुसंगत लय हुआ करती है। यह मूलभूत लय कलाकार या श्रोता को जाने अनजाने परिचित रहती है, किम बहुना उसे उसका आकर्षण भी रहता है। यह मूलभूत लय ही चतरस्र जाती है। तीन ताल का ठेका इसी लय में बांधा गया है। चतरस्र जाति की धीमी लय हृदय के स्पंदनों की लय से मिलती जुलती है, इसीलिए शायद वह मनुष्य की परिचित एवं रुचि की रहती हो। चतरस्र जाति के अति परिचय से पूरी सम प्रमाणबद्धता के परिणाम स्वरूप और खाली भरी के तत्व के सुगम संतुलित प्रयोग से सिद्ध ताल त्रिताल को ही कलाकारों के द्वारा स्वतंत्र वादन के लिए चुनना उचित ही था। कलाकारों, तबला वादकों एवं श्रोताओं ने भी इसी ताल को कला प्रस्तुतिकरण एवं श्रवण के लिए चुना। इसका कारण त्रिताल की गणन आकलन सुविधा है। ताली या मात्रा से गिनने के लिए पूर्ण मात्रा का हिसाब आसान होता है। त्रिताल को दुगुना में बजाया जाए तो वह आठ मात्राओं में बजता है, चौगुन में बजाया जाए तो चार मात्राओं में, आठ गुना में बजाया जाए तो दो मात्रा में, तथा सोलह गुना में एक मात्रा में बजता है। ये सोलह गुना तक गिनी जाने वाली मात्राएं आठ चार दो एक पूर्ण मात्राएं हैं, और पूर्ण मात्राएं गिनना सामान्य रसिक के लिए, संगीत के नव अध्येता के लिए, गायक या वादक के लिए भी सुगम होता है। विविध पूर्ण मात्राओं की रचना कृतियां प्रस्तुत करना अधिक सुलभ होता है। इन रचना कृतियों में मात्रांशों का हिसाब न होने से वे जटिल नहीं होती, फलतः वे गायन सुलभ होती है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे श्रवण सुलभ भी होती हैं। पृष्ठ संख्या 104। तबला वादन में विविध लयों का स्थूल एवं सूक्ष्म प्रस्तुतिकरण हुआ करता है। तबला वादक अगर वादन कला से उत्पन्न प्रगत भाषा में के प्रेम में न फंसे होते तो शायद त्रिताल का उपयोग तबला वादन में इतनी बड़ी मात्रा में न हुआ होता। तबले की भाषा प्रथमतः शायद चतरस्र जाति में पैदा हुई होगी, और फलतः नई रचनाएं चतरस्र जाति में और विशेषतः त्रिताल के लिए पोषक के रूप में निर्मित हुई। वैसे देखा जाए तो कहरवा धुमाली के ठेके भी चतरस्र जाति के ही हैं, किंतु आकार में बड़ी रचनाएं कहरवा धुमाली के ठेके में प्रस्तुतिकरण विसंगत, कदाचित हास्यास्पद भी प्रतीत हुआ होता। फलतः चतरस्र जाति के त्रिताल का ही उपयोग सोलो वादन के लिए हुआ है। त्रिताल आकार में आवश्यक जितना बड़ा है और उसे हम प्रभावात्मकता के साथ मात्रा के आकार को छोटा बड़ा करने की सुविधा के जरिए अपनी इच्छा अनुसार छोटे बड़े आकार का कर सकते हैं। इन सब कारणों से स्वतंत्र तबला वादन के रचनाकारों, वादकों एवं गुरुओं ने तबला सिखाने के लिए त्रिताल को ही चुना। जिस समय वादक कलाकार का लय पर अधिकार प्रबल हुआ तब तिस्र एवं मिस्र जातियों में बजाने की इच्छा उसमें पैदा हुई। उसके फलस्वरूप रूपक एक ताल जैसे ताल सोलो वादन के लिए चुने गए, और अब कलाकार 9, 11, 13, 15, 17 मात्राओं के ही नहीं तो 10 / 1/2 मात्राओं के ताल जैसी आधी मात्राओं वाले तालों को भी समर्थता के साथ बजता हुआ हम देखते हैं। गायन का अच्छा ज्ञान रखने वाले विचारवान एवं प्रतिभावान तबला वादक कलाकारों को ऐसा प्रतीत होने लगा कि गायन में जिस प्रकार एक प्रबंध प्रस्तुत किया जाता है, वैसे ही एक सुनियोजित अखंड विकसित होती जाने वाली विस्तारक्षम एवं कलापूर्ण सौंदर्य कारक वैचारिक रचनाओं की एक श्रृंखला मालिका स्वतंत्र तबला वादन में प्रस्तुत की जाए। इस ध्येयाशक्ति के फलस्वरूप समर्थ प्रतिभावान कलाकारों ने विविध जातियों की रचनाओं का निर्माण किया। विविध रचना प्रकारों की निर्मिति विषयक पार्श्वभूमि, उन रचनाओं के उद्देश्य, स्वतंत्र तबला वादन के प्रस्तुतीकरण के मूल में निहित उनकी भूमिका और व्यक्ति के विशेष विषय में थोड़े में जानकारी इस प्रकार है। पृष्ठ संख्या 105। पेशकार। पेशकार वादन प्रकार स्वतंत्र तबला वादन में आलापी की भूमिका अदा करता है। किम बहुना स्वतंत्र तबला वादन में गायन की आलापी के लिए समांतर रचना पैदा करके उसका विस्तार करने के प्रयत्न के परिणाम स्वरूप ही पेशकार वादन की निर्मिति हुई। कायदा। किसी भी कला प्रस्तुति में चार मूलभूत अंग होते हैं। उस कला का शास्त्र, दूसरा उसका ज्ञान, तीसरा कुशलता एवं चौथा उसे प्रस्तुत करने की रीति। कोई भी कला निरी कला नहीं रहती। कालांतर में उस कला का एक शास्त्र बनता है। फलतः तबला वादन भी निरी कला नहीं रह गई, बल्कि उसका भी एक शास्त्र है। शास्त्राचार है, नियम है, बंधन है, व्याकरण है। व्याकरण के जरिए शिक्षण पद्धति पैदा होती है। तबला वादन में पखावज से प्राप्त शब्द तथा केवल तबले से पैदा हुए कुछ महत्वपूर्ण शब्द समूह ठीक तरीके से हाथ में बैठ जाएं, चढ़ जाएं, इसलिए मात्र तैयारी की के लिए घोटने के लिए कुछ छोटी रचनाएं रची गईं। इन रचनाओं का मूल उद्देश्य यह है कि उनमें प्रयुक्त शब्द अत्यंत सामर्थ्य के साथ सौंदर्यपूर्ण ढंग से एवं प्रभाव कारकता के साथ बजाना संभव हो। ऐसी रचनाओं का घंटों रियाज करने से वे अक्षर वे शब्द अच्छी तरह बैठते हैं। ये रचनाएं एक प्रकार से घोटने के लिए दिए गए पाठ ही हैं। ऐसे पाठों को उर्दू में कायदा कहते हैं। ये कायदे शुरू में यद्यपि रियाज के लिए निर्मित हुए हों, तो भी अच्छी सौंदर्य दृष्टि रखने वाले प्रतिभावान वादकों को उन रचनाओं का रियाज करते समय शायद सौंदर्य निर्मिति का एक निराला ही आनंद प्राप्त हो गया होगा, और उसी के परिणाम स्वरूप वे कलाकार उन रचनाओं की विस्तार निर्मिति की प्रक्रिया में रत हुए होंगे। उन रचनाओं में उन्हें सौंदर्य दृष्टि गोचर हुआ। नवीन रचनाओं में उन्होंने समझदारी के साथ सौंदर्य पैदा किए। उनके विस्तार रूप में उन्होंने सौंदर्य के बीज बोए, और इस यात्रा में उन्हें इतना आनंद मिलने लगा कि उन्होंने और नए नए सुंदर कायदे बनाए। उन कायदों का विस्तार करने की एक अनुशासनबद्ध पद्धति निर्माण की। वे रचनाएं और उनका विस्तार कलात्मक दृष्टि से इतना सुंदर होने लगा कि उन्हें स्वतंत्र तबला वादन के मंच प्रदर्शन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। कायदा निर्मिति और उसका कलात्मक विस्तार करने का एक निधिध्यास ही एक विचार परंपरा में जगा। वह परंपरा है दिल्ली घराना, और इस परंपरा में जो दूसरा घराना इस कायदा वादन प्रकार में बेहद धुंध होकर रत हुआ है वह है अजराना घराना। पृष्ठ संख्या 106। रेला। रेला की संकल्पना पखावज वादन में विद्यमान थी। तबले की रेला संकल्पना शुरू में यद्यपि पखावज वादन के प्रभाव से आई हो, तो भी उक्त रेला वादन का विकास पखावज वादन के विकास से बहुत दूर चला गया। अति द्रुत गतिमान वादन से प्राप्त होने वाली सौंदर्यानुभूति उसका आनंद वादक एवं श्रोता दोनों को पर्याप्त मात्रा में मिलता है। फलतः तबला वादन के लिए अनेक रेला रचनाएं बांधी गईं और इन प्रभावशाली रेलाओं को स्वतंत्र तबला वादन में मंच प्रदर्शन में कायदे के जितना ही महत्व एवं सम्मान का स्थान प्राप्त हुआ। रेला निर्मिति में से अथवा स्वतंत्र रूप में एक रौ निर्मिति की संकल्पना का भी उदय हुआ। रेला रौ की संकल्पना प्रमुखतया अजराणा घराना, लखनऊ और फरुखाबाद घरानों के वादन में प्रचलित हो गई और वे इन घरानों में महत्वपूर्ण वादन प्रकार के रूप में बजाए जाने लगे। कीर्तन, गायन आदि संगीत प्रकारों के प्रस्तुतिकरण में हमें प्रमुखतया दो अंग महसूस होते हैं, पूर्वांग और उत्तरांग। तबला वादन कला को भी इन्हीं दो अंगों में प्रस्तुत किया जाता है। तबला वादन का पूर्वांग यानी पेशकार, कायदा, रेला और रौ है। यह पूर्वांग बहुतांश में दिल्ली अजराणा शैली में प्रस्तुत किया जाता है। उसे वैसा ही प्रस्तुत किया जाए ऐसा कोई नियम या आग्रह नहीं है। तबला वादन का उत्तरांग सामान्यतः ताल की मध्य और द्रुत लय में बजाया जाता है और इस लय में अत्यंत कर्ण मधुर विविध शब्द संपत्ति से समृद्ध एवं कल्पनापूर्ण रचनाएं होती हैं। इन रचनाओं का वर्गीकरण करना हो तो उन्हें गत, टुकड़े, परन, चक्रधार, दुपल्ली, त्रिपल्ली, फरद, कमाली परन, फरमाइशी परन, नौहक्का इत्यादि नामों से संबोधित किया जाता है। इनमें से प्रत्येक रचना के विषय में अलग अलग स्पष्टीकरण मैं यहाँ नहीं देना चाहता। इन सब रचनाओं को मोटे तौर पर गत टुकड़े के नाम से संबोधित किया जाता है। ये सब रचनाएं सीमित आकार की किंतु अलग अलग सूरत की होती हैं। प्रत्येक रचना का बंध, गढ़न, शब्द योजना, गणित, गतिमानता, ध्वनि सौंदर्य, नजाकत आदि सब भिन्न भिन्न होता है। इन मोटे सूक्ष्म निकषों से किया गया रचनाओं का वर्गीकरण सामान्य रसिक के लिए समझने में कठिन हो तो भी जानकार वादक एवं श्रोताओं के तुरंत ध्यान में आ जाती है कि यह गत टुकड़ा अमुक वादन प्रकार का अमुक अमुक उप प्रकार है। पखावज के सौंदर्यपूर्ण परन तोड़े, कायदे के कुछ वाक्यांश, कथक के सुंदर तोड़े अथवा तत्सम रचनाओं की गतिमानता, उनका वजन, आकर्षक शब्द संगति और ध्वनि माधुर्य के प्रभाव के फलस्वरूप प्रतिभावान रचनाकार तबला वादकों ने अत्यंत खूबसूरत काव्य पंक्ति पैदा की। पृष्ठ संख्या 107। उसे हम गत कहकर संबोधित करते हैं। गत सर्वांग सुंदर कविता होती है। जितना सौंदर्य उसकी रचना में होता है उतना ही उसके निकास में भी। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि पेशकार, कायदा, रेला एवं गत टुकड़ा आदि तबले के विविध अंगों के यथोचित कलात्मक प्रदर्शन के जरिए स्वतंत्र वादन प्रस्तुत होता रहता है। स्वतंत्र तबला वादन के प्रस्तुतिकरण में जाने अनजाने एक विशेष सूत्र का अवलंब किया जाता है। पुराने घरानेदार वादकों के प्रस्तुतिकरण में वह विशेष तौर पर महसूस हुआ करता है। उसे हम ध्यान से देखें। सोलो वादन यदि त्रिताल में होता हो तो वादक त्रिताल का ठेका बजाकर वादन को प्रारंभ करता है। दो तीन आवर्तन तथा ठेका बजने के बाद तबला वादक पेशकार का प्रस्तुतिकरण आरंभ करता है। पेशकार के शब्दों एवं अक्षरों का अध्ययन करने पर हमें ज्ञात होता है कि पेशकार की रचना में ठेके का मुखड़ा प्रतीत होने वाले अक्षरों का समावेश है। साथ ही यह भी प्रतीत होता है कि ठेके के खंड और उसका खाली भरी का ढांचा पेशकार में भी वैसा ही है। यह रचना साधारणतः ठेके की लय में बजाई जाती है। इन सब कारणों से पेशकार की रचना बजाते समय ठेके की अनुभूति, एहसास अथवा ठेके का भान वादन एवं वादक एवं श्रोता को निरंतर होता रहता है। इसके पश्चात जो कायदा बजाया जाता है उसमें यह एहसास होता है कि उसकी रचना ठेके के अक्षरों से दूर गई है और वह केवल ताल रचना के से स्थूल रूप में नाता दर्शाने वाली होती है। फिर भी ताल के खंड एवं ताल खाली भरी तथा कायदे के खंड एवं खाली भरी इनमें पर्याप्त साम्य पाया जाता है। कायदों की रचनाओं की ही तरह हमें प्रतीत होता है कि रेले की रचना भी ठेके के खंडों एवं खाली भरी से नाता दर्शाने वाली है। परंतु हम पाते हैं कि रेले के शब्द ठेके के शब्दों से संपूर्णतया मुक्त हुए हैं। यह बात भी हमारे ध्यान में आ जाएगी कि पेशकार बहुतांश में ठेके की लय में प्रस्तुत होता है तो कायदा दुगुन में, कभी कभी चौगुन में प्रस्तुत होता है और रेला चौगुन में और आठगुन में प्रस्तुत होता है। किंतु यद्यपि शब्द ठेके से दूर होते गए हों और प्रस्तुतिकरण के गुणित चाहे जितने क्यों न बढ़े हुए हों, तो भी पेशकार कायदा और रेला सुनते समय हमें ताल ज्ञात होता है और ठेके का स्मरण होता है। यह प्रतीति बिल्कुल लहरा न बजाया जाता हो तो भी अथवा ताली न पकड़ी हो तो भी जानकारों को निश्चय ही होता है। ताल का एवं ठेके का इतना प्रभाव उन वादन प्रकारों पर हुआ करता है। पृष्ठ संख्या 108। जिस समय गत टुकड़ों का प्रस्तुतिकरण सोलो वादन में हुआ करता है तब हम यह पाते हैं कि उन रचनाओं में ठेके के अक्षर खंड और खाली भरी का किसी भी प्रकार का एहसास हमें उक्त गत टुकड़े के प्रस्तुतिकरण में नहीं होता। वह गत टुकड़ा केवल उस ताल की मात्रा संख्या में बंधा हुआ रहता है और उस दृष्टि से गत टुकड़ों के विविध रचना प्रकार ठेके से बहुत दूर गए होते हैं। यह जो विशेष सूत्र तबला वादन में स्थूल रूप में छिपा रहता है उसे निम्न प्रकार से आकृति के जरिए दिखाया जा सकेगा। इस आकृति के आकलन के लिए टिप्पणियां। पृष्ठ संख्या 109। आकृति में दर्शाए अनुसार पेशकार रचना ठेके के अत्यंत निकट तो टुकड़ा रचना ठेके से अत्यंत दूर गई रहती है। रेखाच्छादित भाग उन लक्षणों का, उन रचना का धूसरपन दर्शाता है। कुछ गतें कायदे के खाली भरी तत्व से प्रस्तुत की जाती है तो कुछ गतों में खाली भरी तत्व का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आकृति की मदद से व्यक्त किया गया यह विचार स्थूल रूप में देखना इष्ट होगा। अचूकता के साथ बने हुए नियमों के दृष्टिकोण से इसकी ओर न देखें। इस विचार के माध्यम से सोलो वादन की यात्रा ठेके से दूर दूर कैसे होती रहती है इसे सूत्र रूप में दिखाने का यह प्रयत्न है। इस बात को ध्यान में रखा जाए। अब तक हमने वाद्य एवं वादन सामग्री के विषय में संक्षेप में विचार किया, किंतु कला मुख्यतः कलाकारों की व्यक्तित्व से प्रभावित होती है। फलतः कला को प्रस्तुत करने वाला वादक ही प्रस्तुतिकरण का महत्वपूर्ण घटक है। इस कलाकार का शास्त्र पर का अधिकार उसका समझ बूझकर किया गया रियाज, उस रियाज से उसके हाथ को प्राप्त वजन, स्पष्टता और सुंदरता, उसकी शिक्षा, अनुभव, निरीक्षण एवं इन सबके चिंतन के माध्यम से उसे प्राप्त सौंदर्य दृष्टि और उसे अत्यंत प्रभावशाली रूप में हाथ से प्रस्तुत करने की उसकी क्षमता पर यह कला प्रस्तुतिकरण उच्च है या सामान्य, यह बात सिद्ध होती है। कहा जाता है कि सौंदर्य वस्तु में या रचना में शायद हो भी, किंतु सच्चा सौंदर्य देखने वाले की नज़र में हुआ करता है। और इस संदर्भ में यदि उस कलाकार की नज़र में सौंदर्य हो तो उसका प्रस्तुतिकरण सुंदर बनाने की संभावना निश्चय ही अधिक है। स्वतंत्र तबला वादन का प्रस्तुतिकरण प्रभावशाली ढंग से होने के लिए जो बातें आवश्यक हैं उनका सारांश रूप में परिचय नीचे की चित्राकृति से प्राप्त हो सकता है।